हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के विषय विज्ञान के चैप्टर नंबर 4, जिसका शीर्षक है रासायनिक बंध व रासायनिक समीकरण को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है रासायनिक बंध और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, आपने बॉन्ड और इक्वेशन शब्द को जरूर सुना होगा। बॉन्ड का मतलब होता है बंधन, जैसे किसी दो दोस्तों के बीच का बॉन्ड। और समीकरण का मतलब होता है किसी भी दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने का तरीका, समीकरण कहलाता है। जैसे आप मैथ में इसका उपयोग करते हैं, किसी भी दो एक्सप्रेशंस को इक्वेशन के माध्यम से आप सॉल्व करना जानते हैं। तो कुछ उसी प्रकार से यहाँ भी केमिकल बॉन्ड और केमिकल इक्वेशन है। केमिकल बॉन्ड का मतलब हुआ कि यहां भी बंधन को ही देखना है, परंतु अब हम परमाणुओं के बीच बंधन को देखेंगे। और इक्वेशन में अलग अलग परमाणु और अणु का इक्वेशन देखेंगे। आपने मैथमेटिक्स में जो इक्वेशंस पढ़े हैं, उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी इक्वेशन होते हैं। अब इसके बारे में अधिक जानकारी हम आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम प्रतीक, आयन, मूलक, संयोजकता, अणुसूत्र, रासायनिक बंध और रासायनिक समीकरण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ेंगे और इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम प्रतीक को पढ़ेंगे। आप मेरे साथ अपने किताब के पेज नंबर 21 पर देखिए। प्रतीक, जिसे इंग्लिश में सिंबल कहा जाता है, तत्वों के रासायनिक नाम को न्यूनतम अंग्रेजी अक्षरों में प्रतीक द्वारा व्यक्त करते हैं। प्रारंभ में तत्वों के नाम उनके व्युत्पत्त स्थान तथा कुछ के नाम उनके विशिष्ट रंग से लिए गए थे, यथा स्वर्ण उसके रंग से तथा कॉपर उसके प्राप्ति स्थान साइप्रस से लिए गए। डाल्टन प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतीक का प्रयोग तत्व की एक निश्चित मात्रा अर्थात तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करने के लिए किया। बर्जिलियस ने तत्वों के प्रतीक के लिए नई प्रणाली विकसित की, जिसमें तत्वों के नाम के एक अथवा दो अक्षर प्रयुक्त होते थे। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, भी इसी आधार को मानते हुए तत्व के प्रतीक की स्वीकृति प्रदान करती है। इसके अनुसार तत्व को उसके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्त करते हैं, जैसे हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, कार्बन C, नाइट्रोजन N। कई तत्वों के नाम एक ही अक्षर से शुरू होने पर एक तत्व के लिए प्रथम अक्षर तथा अन्य के लिए प्रथम अक्षर के साथ दूसरा अन्य अक्षर भी लेते हैं, जिसका प्रथम अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला से कैपिटल लेते हैं तथा दूसरा अक्षर छोटे अक्षर के रूप में लिखा जाता है, जैसे बोरॉन B, बेरिलियम BE, बेरियम BA, बिस्मथ BI, कार्बन C, कैल्शियम CA, कोबाल्ट CO, क्लोरीन CL, क्रोमियम CR। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नाम से लिए गए हैं, जैसे सोडियम नेट्रियम से लिया गया है जिसका प्रतीक Na है, सिल्वर अर्जेंटेनम Ag, सोना ऑरम Au, कॉपर कप्रम Cu, पोटेशियम कैलियम K, आयरन फेरम Fe। परमाणु क्रमांक 100 से ऊपर वाले तत्वों के प्रतीक तीन अक्षरों में उनके संख्यात्मक नाम से लिए गए हैं, जैसे संख्या 1 के लिए नाम अन, 2 के लिए बाई, 3 ट्राई, 4 क्वाड, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 अप्ट, 9 इन, 0 नील। सभी अंकों के नामों को जोड़कर अंत में ईएम जोड़ते हैं। तत्व के प्रतीक में सभी अंकों के नाम का पहला अक्षर लिखते हैं। परमाणु क्रमांक 101, नाम अन नील अन ईएम, प्रतीक यू एन यू। परमाणु क्रमांक 102, नाम अन नील बाईयम, प्रतीक यू एन बी। परमाणु क्रमांक 103, नाम अन नील ट्राइयम, प्रतीक यू एन टी। परमाणु क्रमांक 104, नाम अन नील क्वाडियम, प्रतीक यू एन क्यू। स्टूडेंट्स, प्रतीक को समझना काफी आसान है। क्या आप जानते हैं कि अब तक लगभग 115 या 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में जानना और उनके बारे में लिखते हुए उसका पूरा का पूरा नाम लिखना काफी कठिन हो जाता है। वैज्ञानिक इसी दुविधा से बचने के लिए उनके सिंबल्स उपयोग करते हैं। जब भी वो इक्वेशन लिखते हैं तब उनका पूरा नाम न लिखकर सिर्फ सिंबल लिखते हैं। जब उसका स्ट्रक्चर और डिजाइन बनाते हैं तब भी सिर्फ सिंबल का उपयोग किया जाता है। सिंबल साधारण भाषा में जो हम समझते हैं वही है। क्या आपने आसपास कहीं सिंबल का उपयोग होता हुआ नहीं देखा? जरूर देखा है। बहुत जगह निशान बने होते हैं। रोड के किनारे आपने भी टर्निंग का निशान देखा होगा, जहां एक एरो बनाया हुआ होता है। उसी प्रकार से जो सिंबल केमिस्ट्री में उपयोग किया जाता है वह केमिकल एलिमेंट्स के नाम बताते हैं, और यह जो सिंबल है वह उन्हीं नामों से बनाया जाता है। सबसे पहले सिंबल के बारे में डाल्टन ने बताया था और डाल्टन ने उपयोग करना शुरू किया था। आप अपने किताब के चित्र संख्या 4.1 में डाल्टन द्वारा प्रदत्त तत्व के प्रतीक को देख सकते हैं, जहां डाल्टन ने सर्किल और उसके अंदर एक बड़ा सा सॉलिड डॉट हाइड्रोजन के लिए उपयोग किया था सिंबल के रूप में, और ऑक्सीजन के लिए सिर्फ एक ब्लैंक सर्कल, कॉपर के लिए एक सर्कल के ठीक बीच में सी लिखा हुआ, आयरन के लिए एक सर्किल के बीच में आई लिखा हुआ, सल्फर के लिए एक सर्किल के बीच में प्लस का निशान। तो इस प्रकार के जो सिंबल्स हैं वह केमिकल एलिमेंट्स के लिए उपयोग किए जाते थे डाल्टन के द्वारा, लेकिन इनका उपयोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। बार बार इस तरह के डिजाइंस बनाना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए बाद में बर्जिलियस ने एक नया तरीका दिया जिसे आज भी हम उपयोग करते हैं। केमिस्ट्री में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इन सभी चीज़ों का निर्धारण करती है, उस संस्था का नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे शॉर्ट में IUPAC कहते हैं। इस संस्था ने भी बर्जिलियस द्वारा दिए गए प्रणाली को ही स्वीकारा और उसी को हम आज भी उपयोग करते हैं, जिसके अनुसार तीन तरह के नियम बनाए गए हैं। पहला कि साधारणतः किसी भी केमिकल एलिमेंट के नाम का पहला अक्षर ही कैपिटल में लिखा जाएगा और उसी को उस एलिमेंट का सिंबल कहा जाएगा। लेकिन 118 एलिमेंट्स हैं तो हमें यह जरूर समझ में आता है कि एक ही लेटर से एक एलिमेंट का नाम तो हो ही सकता है, एक से ज्यादा भी एलिमेंट का नाम जरूर होगा। तो उस केस में क्या करेंगे? तो यह है दूसरा रूल, जिसमें कहा गया है कि जब भी दो एलिमेंट्स का नाम एक ही लेटर से शुरू हो तब उनमें से एक का सिंबल तो पहला लेटर होगा, लेकिन दूसरे का सिंबल पहला लेटर के साथ साथ अन्य लेटर भी उसके साथ लिखा जाएगा। उदाहरण के लिए आप अपनी किताब में देख सकते हैं, साधारण वाला जो रूल है उसके हिसाब से हाइड्रोजन बनाया गया है, हाइड्रोजन का सिंबल H है, और उसी प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन भी है, जहां एलिमेंट्स के पहले लेटर को सिंबल के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन बोरोन, बेरिलियम, बैरियम और बिस्मत, ये सारे के सारे बी से शुरू होते हैं, तो इनमें जो बोरोन है वो पहले रूल के हिसाब से सिर्फ बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन बेरिलियम इसे बी के साथ ई भी लिखा जाएगा, और बेरियम के लिए बी ए, बिस्मत के लिए बी आई। तो इस प्रकार से और भी उदाहरण आपकी किताब में दिए गए हैं। एक और बात याद रखनी है कि पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल होता है। यह जो रूल है वह सिर्फ 100 तक ही काम करता है, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक 101, 102, 103 है, उनके सिंबल एक और रूल से लिखे जाते हैं, जिसके अनुसार एक के लिए अन, दो के लिए बाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए क्वाड, पांच के लिए पेंट, छह के लिए हेक्स, सात के लिए सेप्ट, आठ के लिए ऑग, नौ के लिए इन और जीरो के लिए नील का उपयोग किया जाता है। फिर परमाणु क्रमांक जो है वो एक, जीरो और एक है, तो एक के लिए जैसा कि मैंने बताया अन का उपयोग किया जाएगा, जीरो के लिए नील का, और फिर एक है तो उसके लिए अन, अन, नील, अन, और इसके लास्ट में ईएम को जोड़ा जाता है, तो क्या होगा, अन, नील, अन, ईएम, या तो इस एलिमेंट का नाम होगा और इसका सिंबल इन सभी छोटे 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 टुकड़ों का पहला लेटर लेते हैं। तो अन का पहला लेटर यू, नील का पहला लेटर एन, और अन का पहला लेटर U, तो सिंबल क्या होगा, यू एन यू। उसी प्रकार से परमाणु क्रमांक 102 के लिए यू एन बी, परमाणु क्रमांक 103 के लिए यू एन टी, परमाणु क्रमांक 104 के लिए यू एन क्यू, के बाद परमाणु क्रमांक 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, इन सब के लिए आप खुद से लिखना सीखें और लिखकर अपने शिक्षक को जरूर दिखाएं। 105 के लिए क्या होगा, अन, नील, पेंट, बिल्कुल सही, तो अन, नील, पेंट, ईएम, यह है इसका नाम, और इसका सिंबल क्या होगा, यू एन पी। इसी प्रकार से आप खुद से करें। अब आगे पढ़ते हैं, आप अपने किताब के पेज नंबर 22 में देखिए, आयन, आयन को इंग्लिश में भी आयन ही कहते हैं, तत्वों के परमाणुओं में ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेशित कण प्रोटॉन बराबर संख्या में होने के कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा ग्रहण कर आवेशित हो जाता है। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आवेश के आधार पर आयन दो प्रकार के होते हैं, पहला धन आयन, दूसरा ऋण आयन। धन आयन को इंग्लिश में कैट आयन कहते हैं। तत्व के विलगित गैसीय परमाणु के संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन निकलने से धन आयन बनता है। इस क्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है। एक इक्वेशन दिया गया है, ए जो कि गैस है प्लस ऊर्जा गिब्स ए प्लस प्लस ई माइनस, ए धन आयन है। विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। धन आयन का आकार अपने संगत परमाणु से सदैव छोटा होता है, क्योंकि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन हटने से नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल बढ़ जाने से आकार घट जाता है। सामान्यतः धातु परमाणु ही धन आयन बनाते हैं। धातु परमाणु एक संयोजक, द्विसंयोजक, त्रिसंयोजक, चतुःसंयोजक व पंच संयोजक धन आयन बनाते हैं। उसके बाद ऋण आयन, जिसे इंग्लिश में एन आयन कहते हैं। तत्व के बेलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़ने से बने ऋण आवेशित कण को ऋणायन कहते हैं। इस क्रिया में प्रथम इलेक्ट्रॉन जोड़ने से ऊर्जा विमुक्त होती है, जिसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। किसी तत्व के ऋणायन का आकार अपने संगत परमाणु से सदैव बड़ा होता है, क्योंकि ऋणायन में इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अभ्र फैल जाता है। सामान्यतः अधातु परमाणु ऋणायन बनाते हैं। तो यहां पर हमें आयन के बारे में पढ़ना है। आयन मतलब चार्ज पार्टिकल्स। क्या आप जानते हैं कि परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है? इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है कि परमाणु में ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन तथा धन आवेशित कण प्रोटॉन बराबर संख्या में होते हैं, और इसी वजह से परमाणु विद्युत उदासीन होता है। निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होते हैं और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, लेकिन परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा ग्रहण कर आवेशित हो जाता है। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। जब भी बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कहीं से आए या बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन कहीं चला जाए, तब परमाणु चार्ज्ड हो जाता है। इसी चार्ज्ड पार्टिकल को आयन कहते हैं। यहां पर या तो हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं एक परमाणु में। तो देने और लेने के कारण दो प्रकार के आयन मुमकिन है, एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन। धन आयन को कैटायन कहते हैं और ऋण आयन को एनायन कहते हैं। कैटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब है कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, और जब यह निकलता है उस समय ऊर्जा का अवशोषण होता है, या ऐसा कहें कि ऊर्जा देने के बाद ही किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है। तो जो ऊर्जा किसी परमाणु के बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उस परमाणु को दी जाती है, उसी ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज मतलब धन आयन सामान्य रूप में धातु ही बनाते हैं। अब ऋण आयन, ऋण आयन का मतलब होता है निगेटिवली चार्ज्ड। इसका मतलब है कि किसी भी एटम पर इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है, उसके बाहरी कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु से आ चुका है। अब तो इस क्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है। इलेक्ट्रॉन के आने से जो ऊर्जा परमाणु से निकलता हो, उसी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इसे सामान्यतः अधातु ही बनाते हैं। तो ऋणायन और धनायन का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। धनायन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, ऋणायन हमेशा निगेटिवली चार्ज होता है। धनायन को धातु बनाते हैं और ऋणायन को अधातु बनाते हैं। धनायन बनने से सामान्य रूप में परमाणु का आकार घट जाता है, जबकि ऋणायन बनने से परमाणु का आकार बढ़ जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। आप अपने किताब के पेज नंबर 22 को देखिए। मूलक, जिसे इंग्लिश में रेडिकल कहते हैं, आयनिक पदार्थ अम्ल व क्षारक जल में विलय होकर आयनों में अपघटित हो जाते हैं, जो अभिक्रिया में एक इकाई की तरह भाग लेते हैं। इन्हें मूलक कहते हैं। मूलक दो प्रकार के होते हैं, पहला सरल मूलक, दूसरा संयुक्त मूलक। सरल मूलक जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं, उदाहरण Na+, Mg2+, Cl- Br-, और संयुक्त मूलक दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जिस पर कोई निश्चित आवेश होता है, संयुक्त मूलक कहलाते हैं। उदाहरण NO3- NH4+ आदि। आवेश के आधार पर भी मूलकों को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, पहला क्षारीय मूलक, दूसरा अम्लीय मूलक। क्षारीय मूलक ये धातु धनायन या धन आवेशित मूलक होते हैं। धात्विक भस्मों से प्राप्त होने के कारण इन्हें भास्मिक मूलक भी कहते हैं। उदाहरण Na+, Mg2+, NH4+ आदि। दूसरा अम्लीय मूलक। अधातु ऋणायन व ऋण आवेशित मूलकों को अम्लीय मूलक कहते हैं। उदाहरण Cl-, Br-, NO3- आदि। एक परमाणुवीय धन आयन के उदाहरण है एक संयोजक सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, Q+, Cu+, मर्क्यूरस Hg2, 2+। अब विसंयोजक बेरियम Ba2+, कैल्शियम Ca2+, मैग्नीशियम Mg2+, जिंक Zn2+, मैग्नीज Mn2+, फेरस Fe2+, क्यूप्रिक Cu2+, मर्क्यूरिक Hg2+, स्टेनस Sn2+, लैड Pb2+, त्रिसंयोजक एल्यूमिनियम Al3+, क्रोमियम Cr3+, फेरिक Fe3+, बहुसंयोजक स्टैनिक Sn4+, आर्सेनिक As5+। एक परमाणुवीय ऋण आयन एक संयोजक क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, फ्लोराइड F-। द्विसंयोजक ऑक्साइड O2-, सल्फाइड S2-। त्रिसंयोजक नाइट्राइड N3-, फॉस्फाइड P3-। बहुपरमाणुवीय ऋणायन एक संयोजक हाइड्रोक्साइड OH- साइनाइड CN-। द्विसंयोजक कार्बोनेट CO3 2- सल्फेट SO4 2-। त्रिसंयोजक फॉस्फेट PO4 3- नाइट्रेट NO3- सल्फाइड SO3 2- परमैग्नेट MnO4- एसीटेट CH3COO-। आयन पर उपस्थित आवेश उसकी संयोजकता प्रदर्शित करता है। ऋण आवेश के अंत में सामान्यतः एट आइड व आइड पश्च लग्न लगाते हैं। धन आयन के अंत में ईएम लगाया जाता है। परिवर्तनशील संयोजकता होने पर कम आवेश युक्त आयन के लिए अस व अधिक के लिए एक प्रयुक्त होता है। मूलक वह आयनिक पदार्थ है जो किसी अभिक्रिया में एक इकाई की तरह भाग लेता है। मूलक का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहले प्रकार में सरल और संयुक्त मूलक है और दूसरे प्रकार का वर्गीकरण उनके आवेश के आधार पर किया गया है, जहां क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो मूलक बनते हों उसे सरल मूलक कहते हैं, जैसे Na+, Mg2+ और दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जिस पर कोई निश्चित आवेश होता हो उसे संयुक्त मूलक कहते हैं, जैसे NO3- NH4+। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों हैं और NO3- में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं, तो दो या दो से अधिक परमाणुओं से बना हुआ मूलक संयुक्त मूलक कहलाता है, और जो मूलक सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु से बने हो उसे सरल मूलक कहते हैं। दूसरा वर्गीकरण आवेश के आधार पर किया गया है। जो मूलक पॉजिटिवली चार्ज हो, मतलब धनावेशित हो, उसे क्षारीय मूलक कहते हैं, और जो मूलक ऋण आवेशित हो उसे अम्लीय मूलक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे Na+, Mg2+, NH4+, ये क्षारीय मूलक हैं जो धातु धनायन से बने होते हैं तथा इन पर पॉजिटिव चार्ज है। वहीं अम्लीय मूलक उसे कहते हैं जिस पर निगेटिव चार्ज हो, जैसे Cl- Br- NO3-। यहाँ जो लिस्ट दिया गया है, एक परमाणुवीय धन आयन, एक परमाणुवीय ऋण आयन, बहुपरमाणुवीय ऋण आयन, इन सब को पढ़ के याद रखना है कि नाइट्रेट किसे कहते हैं, ब्रोमाइड किसे कहते हैं, ब्रोमाइड पर चार्ज कितना होता है, एल्युमिनियम का संयोजक कितना होता है, या फिर सिल्वर पर चार्ज कितना हो सकता है, एक संयोजक है या द्विसंयोजक है, इन सब के बारे में पढ़ के उसके बारे में याद रखना है। अब हम आगे पढ़ते हैं जहां पर कुछ सुझाव दिए गए हैं, कुछ और भी जानकारी दी गई है। आयन पर उपस्थित आवेश उसकी संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। जितने भी आयन हमने अभी तक पढ़े जैसे नाइट्रेट NO3- तो इस पे माइनस चार्ज है, यह माइनस चार्ज उसकी संयोजकता दर्शाती है। संयोजकता के बारे में अभी हम तुरंत पढ़ने वाले हैं। ऋण आवेश के अंत में सामान्यतः 8 ATE, IT, ITE व ID, IDE पश्चलग्न लगाते हैं। धन आयन के अंत में EM, IUM लगाया जाता है तथा परिवर्तनशील संयोजकता होने पर कम आवेश युक्त आयन के लिए अस व अधिक के लिए एक प्रयुक्त होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं जहां संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं। बोर के परमाणु प्रतिरूप के अनुसार परमाणु के अंतिम कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 18वें वर्ग के उत्कृष्ट तत्वों के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं और ये रासायनिक रूप से सामान्यतः अक्रिय होते हैं। दूसरे शब्दों में इनकी संयोजन क्षमता शून्य होती है। सक्रिय तत्वों में परमाणु अन्य तत्वों के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भरने का प्रयास माना जाता है। सन 1916 में कौशल लुइस ने अष्टक नियम दिया, जिसके अनुसार परमाणु के बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अथवा सहभाजन होता है तथा दो परमाणु आपस में संयोजित हो जाते हैं। प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन क्षमता होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। परमाणु अपने बाह्यतम कोश में अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का साझा या स्थानांतरण कर लेता है, वही तत्व की संयोजन क्षमता या संयोजकता होती है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम व एल्युमिनियम प्रत्येक के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में क्रमशः 1, 2 व 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें त्याग कर ये अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इनकी संयोजकता क्रमशः 1, 2 व 3 होती है। ऑक्सीजन व फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः 6 व 7 होती है। बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूर्ण करने के लिए क्रमशः 2 व 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अधिक आसान है, अतः इनकी संयोजकता का परिकलन 8 में से क्रमशः 6 व 7 घटाकर किया जा सकता है, जिससे ऑक्सीजन की संयोजकता 2 व फ्लोरीन की संयोजकता 1 प्राप्त होती है। कुछ अपवाद में अष्टक का पालन नहीं होता है, जिसका अध्ययन उच्च कक्षाओं में करेंगे। परिवर्तनशील संयोजकता, कुछ तत्वों की संयोजकता निश्चित न होकर एक से अधिक होती है, इसे परिवर्तनशील संयोजकता कहते हैं। कुछ तत्वों की परिवर्तनशील संयोजकता इस प्रकार है। तत्व कॉपर प्रति Cu संयोजकता 1 व 2, पारा Hg 1 व 2, टिन Sn 2 व 4, लोहा Fe 2 व 3, फॉस्फोरस पी 2 व 5, लेड Pb 2 व 4। सबसे पहले हमें अष्टक नियम के बारे में समझना है। अष्टक नियम कौशल लुइस ने 1916 में दिया था और अष्टक नियम यह कहता है कि परमाणु के बाह्यतम कोष में अष्टक पूर्ण करने के लिए एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अथवा सहभाजन होता है। तथा दो परमाणु आपस में संयोजित हो जाते हैं। मतलब कोई भी परमाणु चाहता है कि उसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन कम होता है तो किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो वो दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे देता है। कभी कभी दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, जिससे दोनों परमाणुओं के बाहरी कक्ष में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसके कारण परमाणु आपस में संयोजित हो जाते हैं। फिर हमें संयोजकता के बारे में जानना है। संयोजकता किसे कहते हैं? प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन क्षमता होती है। परमाणु आपस में जो इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं या इलेक्ट्रॉन की लेन देन करते हैं, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही संयोजकता कहते हैं। टारगेट यही है कि किसी भी तरह बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण किए जाए। अगर किसी परमाणु में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्ष में, तो वो परमाणु चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को दे दे, ताकि उसका जो बाहरी कक्ष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्ष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो चाहता है कि वो किसी दूसरे परमाणु से 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, ताकि उसके बाहरी कक्ष में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कुछ तत्व अलग अलग जगह पर अलग अलग संयोजकता दिखाते हैं, इसे परिवर्तनशील संयोजकता कहते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर 1 और 2 संयोजकता दिखाता है, लोहा 2 व 3 संयोजकता दिखाता है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जहां हमने सबसे पहले प्रतीक, फिर आयन, मूलक और संयोजकता के बारे में पढ़ा। अगले सेशन में हम अणुसूत्र, रासायनिक बंध और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं श्रवण विवेक आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।